भागवत सार की श्रृंखला में सातवां स्कंद दसवें अध्याय पर चर्चा है। इसके एक श्लोक को दोहराइए। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेयसि मुक्त बन्धः। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापम् कलेवरं काल जवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेष्यसि मुक्त बन्धः। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापम् कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्त बन्धः।
Thank you.
भोगेन भौतिक सुख की अनुभूतियों से पुण्यम पुण्य कर्म या उनके कार्य कुशलेन पवित्र पवित्रता पूर्वक कर्म करके समस्त पवित्र कर्मों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पापम अपवित्र कार्यों के सभी प्रकार के फल कलेवरम भौतिक शरीर कालजवेन शक्तिशाली काल द्वारा हित्वा त्याग कर कीर्तिं कीर्ति या ख्याति विशुद्धां अलौकिक या पूर्णतया शुद्ध सुरलोक गीतां स्वर्ग में भी प्रशंसित विताय सारे ब्रह्मांड में विस्तार करके मां मुझ तक एष्यसि वापस आओगे मुक्त बंधः बंधन से मुक्त होकर। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम वापस लौट सकोगे। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एवं प्रह्लाद्या संशेन साधन सिद्धत्वम नित्य सिद्धत्वम च नारद दिव्य ज्ञेयम्। भक्तों की दो श्रेणियां होती हैं, साधन सिद्ध तथा नित्य सिद्ध। प्रह्लाद महाराज मिश्रित सिद्ध हैं, अर्थात वे अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध हैं। इनकी तुलना नारद जैसे भक्तों से की जाती है। विगत काल में नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने के कारण उन्होंने साधन सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी वे नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं भूलते। कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। यह जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु यह संसार ऐसा बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है। पदम पदम यत विपदाम। इस तरह भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। प्रह्लाद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। यह पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। प्रह्लाद महाराज जैसा उन्नत भक्त जीवन मुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में भौतिक शरीर से मुक्त रहता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वति देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस अध्याय के चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्रापि पीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचकः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारत्कण्ठयो स्फुरा।
ये आखिरी अध्याय इस स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथाओं के विषय में या शुद्ध भक्ति की चर्चा करने के विषय में है। फिर अब इसके आगे पांच अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन होगा। तो ये पहले विभाग में इसके शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया और शुद्ध भक्ति को बताने के लिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया गया जो इस अध्याय में समाप्त होगा। और फिर आगे वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, एक सभ्य समाज के लिए क्या नियम है, ब्रह्मचारियों के लिए क्या नियम है, गृहस्थों के लिए क्या नियम है, वानप्रस्थों के क्या नियम है, ये सब आगे नारद मुनि वर्णन करने वाले हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं अर्पण की। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उनसे कोई वर मांगने को कहा। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, ज्ञान से परिपूर्ण। और अब इस अध्याय में वर्णन है कि भगवान ने जब कहा कि कोई वर मांगो तो कैसे उन्होंने आचरण किया। तो इस अध्याय के पहले 10 श्लोकों में प्रहलाद महाराज ये समझाते हैं या भगवान से कोई भी वर स्वीकार करने को मना करते हैं कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए। ये पहले 10 श्लोकों में है। उसके बाद के श्लोकों में भगवान कहते हैं, प्रहलाद महाराज से बात करते हैं और उनको वर मांगने के लिए प्रेरित करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। ये करीब 17 श्लोक तक होता है। और फिर उसके आगे भगवान समझाते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यपु इसका उद्धार हो चुका है, इसका उद्धार हो गया है। और फिर भक्तों का गुणगान करते हैं भगवान, उसके आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से। 25वें श्लोक से है 31वें श्लोक तक, और फिर 32वें श्लोक से आगे नारद मुनि जय और विजय के अन्य जन्म का भी वर्णन करते हैं। जैसे इस जन्म का वर्णन किया जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, लेकिन अब आगे उनके और दो जन्मों का वर्णन नारद मुनि करते हैं। और फिर 46वें श्लोक से लेकर 50वें श्लोक तक वो इस कथा को सुनने का फल बताते हैं, श्रुति फल। क्या लाभ है ये प्रहलाद महाराज की कथाओं को सुनने का, भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य को सुनने का। और फिर उसके आगे जो अंतिम विभाग है श्लोक क्रमांक 51 से लेकर करीब 70 तक, तो उसमें शिवजी की कैसे रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने, इसको वो बताते हैं। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है। तो जब प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंह देव ने कहा कि मांगो, और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रुके नहीं भगवान प्रहलाद के, कुछ मांगने से पहले ही कह दिया बहुत लंबी उम्र होगी तुम्हारी। और अब भगवान ने जब कहा मांगो, तो प्रहलाद महाराज बोलना शुरू करते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा जन्म एक असुरी परिवार में हुआ, स्वाभाविकतः मैं भौतिक भोगों से, भौतिक इच्छाओं से आसक्त हूं। आप सब लोग रोज आते हैं तो इतना रोज ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल को स्विच ऑन करें, स्विच ऑफ करें, या फिर साइलेंट पे रखें। ये हर रोज बोलना नहीं चाहिए, और वैसे भी समय पर आना चाहिए सब लोगों को, 8:30 मतलब 8:30 बजे तक आ जाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे कि मैं बहुत आसक्त हूं, वैसे ही स्वाभाविकता मेरी आसक्ति है भौतिक भोगों में, एक असुर कुल में जन्म लेने के कारण। और फिर आप मुझे क्यों और लालच दे रहे हैं, क्यों और लोभी बना रहे हैं, क्यों मुझे और भौतिक भोग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मांगो मांगो, पहले ही मेरे अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, और आप कहेंगे तो मैं मांग लूंगा, तो इसीलिए मुझे ये ऐसे प्रेरित मत कीजिए, मुझे ऐसे उकसाइए नहीं कुछ मांगने के लिए, तो आप क्यों उकसा रहे हैं मुझे? तो ये बहुत सुंदर बात प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो भगवान जब कह रहे हैं देने के लिए, तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति कहेगा ले लेना चाहिए, भगवान दे रहे हैं, भक्त का क्या कार्य होता है, जो भगवान चाहे उसको करना। अब यहां भगवान दे रहे हैं और प्रहलाद महाराज को तो तुरंत लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज, तो ये समझ रहे हैं या फिर हमें समझा रहे हैं कि जब भगवान भी देने के लिए आए, भगवान भी हमें देने के लिए तैयार हो वर, हमें कोई भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए, हमें कोई वर नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो देंगे वो बहुत अच्छा होगा। एक भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम जो भी मांगेंगे भगवान से वो बहुत थोड़ा होगा, वो बहुत कम होगा, हमारी भौतिक बुद्धि से दूषित होगा, लेकिन जो भगवान देंगे वो बहुत ज्यादा होगा, हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। इसीलिए मांगने की क्या आवश्यकता है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति के पास जाता है और उससे कुछ 5 रुपया 10 रुपया मांगता है, लेकिन दूसरी ओर यही व्यक्ति जाता है और उनसे कहता है आपकी जो इच्छा हो वो दीजिए, तो एक करोड़पति व्यक्ति 5 रुपया तो नहीं देगा, उसकी भी हिंदी में कहते हैं इज्जत का सवाल है ना, तो 5 रुपया तो नहीं देगा। इसी तरह अगर हम भगवान से कह दें आपकी जो इच्छा हो वो दीजिए, तो भगवान के लिए, भगवान को अपनी रेपुटेशन बनाए रखनी है ना, भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान अपने हिसाब से देंगे, तो जो उनके हिसाब से होगा वो हमारे लिए हितकर होगा, लाभदायक होगा।
इसीलिए भक्त को मांगना नहीं चाहिए भगवान से, हृदय में यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी देंगे जो भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा। अगर नहीं भी देंगे भगवान, मान लीजिए किसी भक्त को कुछ नहीं देंगे भगवान, तो भी हमारे लिए अच्छा है। हरिष्य तद धनम शनय, भागवत में कहा गया है कि भगवान अगर जिस भक्त के ऊपर अपनी विशेष कृपा करते हैं, जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनको तो भौतिक सुख भौतिक लाभ या अन्य चीजें दे देते हैं, लेकिन जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है भगवान की, हरिष्य तद धनम शनय, धीरे धीरे उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं, सब कुछ चला जाता है उसका। तो ये भगवान की विशेष कृपा, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, उसके लिए और कोई नहीं रहता, कोई सहारा नहीं रहता, कोई घर नहीं रहता, कोई धन नहीं रहता। जैसे शिला प्रभुपाद जब पारिवारिक जीवन में थे, व्यापार किया करते थे, तो उनका परिवार इत्यादि उनसे छूट गया, मतलब पत्नी ने कह दिया कि प्रभुपाद ने पूछा था कि तुम्हें चाय पसंद है या मैं, यू वॉन्ट टी और मी, उनकी पत्नी ने कहा टी, चाय ज्यादा पसंद है, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो ये भगवान की कृपा, फिर व्यापार कर रहे थे, झांसी में थे, उनको टेलीग्राम मिला झांसी में कि उनका जो इलाहाबाद में व्यापार चल रहा था वो एक नौकर सब कुछ लूटकर भाग गया, 7,000 रुपया उस समय लेकर भाग गया। और प्रभुपाद ने जब ये पढ़ा तो हंसे और इस श्लोक को कहा, हरिष्य तद धनम शनय, कि भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है भगवान उसका सब कुछ हरण कर लेते। तो घर चला गया, बिजनेस सारा चला गया, प्रभुपाद ने कहा भगवान की विशेष कृपा हुई है। तो भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसका सब कुछ हर लेते। तो प्रहलाद महाराज यहां कह रहे हैं कि मुझे प्रेरणा, मुझे उकसाइए नहीं कुछ लेने के लिए, मैं कुछ नहीं चाहता, वैसे ही मैं बहुत भोगों में पड़ा हुआ हूं। तो मानो भगवान ने पूछ लिया हो, प्रहलाद महाराज आगे कुछ कहने से पहले ये सोच रहे हैं कि शायद भगवान पूछेंगे कि क्या मैं ऐसे उकसाता हूं लोगों को, आप मुझे कह रहे हो कि मुझे उकसाइए नहीं, तो क्या मैं उकसाता हूं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं साधारणता आप कुछ ऐसा नहीं करते, आप जो भी करते हैं भक्त के अच्छे के लिए करते हैं, और इसीलिए आपने मुझे यहां भेजा है। यहां देखिए प्रहलाद महाराज अपनी स्थिति को स्वयं बता रहे हैं, कौन है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं आपने मुझे यहां भेजा है ताकि ये जो भोगों में पड़े हुए लोग हैं इनको एक उदाहरण मिल सके कि शुद्ध भक्ति क्या है। ऐसे कई आचार्य महान भक्त हैं जो अपनी स्थिति कभी कभी ऐसे बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने अपनी स्थिति बताई कि आपने मुझे भेजा है केवल यहां लोगों को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ताकि मैं दिखला सकूं कि शुद्ध भक्ति क्या है। इन्हें नित्य सिद्ध कहा जाता है, साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध, ये दो प्रकार के भक्त होते हैं। साधना सिद्ध अर्थात वे लोग जो इस भौतिक जगत में साधना के द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं अर्थात वैदिक साधना, भक्ति, रागानुगम भक्ति इत्यादि, और उसके बाद नियमों का कड़ाई से पालन करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करके फिर भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें साधना सिद्ध कहते हैं। और दूसरे होते हैं नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा से चले जाते हैं, वो इस जगत में अपने कर्मों के अनुसार जन्म नहीं लेते। तो इस जगत में जब वो आते हैं नित्य सिद्ध भक्त, केवल भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज करे आपने मुझे भेजा है, अर्थात वो कह रहे हैं कि मैं यहां अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, कोई कर्म से नहीं आया हूं, आपने मुझे भेजा है ताकि एक भक्ति का, शुद्ध भक्ति का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो इनको नित्य सिद्ध कहा जाता है। तो साधना सिद्ध व्यक्ति, नित्य सिद्ध व्यक्ति, जब ये साधना सिद्ध व्यक्ति भगवान के धाम पहुंचता है तब उसकी क्या अवस्था होती है, जब वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस जगत में साधना सिद्ध है, साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर रहा है। एक है नित्य सिद्ध, जिसको साधना की आवश्यकता नहीं है, वो सिद्ध ही है, वो कभी उसका पतन नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, वो कभी भगवान से अलग नहीं होता। तो नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध, जब साधना सिद्ध भगवान के धाम पहुंचता है भक्ति करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, तब उसकी स्थिति क्या होती है? दोनों समान हो जाते हैं। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। भगवान कहते हैं कि जब एक व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो उसमें स्थित हो जाता है, समः सर्वेषु भूतेषु, तब सारे जीव समान होते हैं। फिर नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध में भेद नहीं रह जाता, लेकिन अन्यथा उसमें भेद होता है इस भौतिक जगत में। तो प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध हैं, जो केवल अपने कार्य को दिखलाने के लिए यहां पर आए। तो ऐसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपने मुझे केवल इसलिए भेजा है यहां पर कि मैं लोगों को दिखला सकूं कि भक्ति क्या है। तो मानो भगवान ने पूछा कि अच्छा, भक्त के क्या गुण होते हैं? आप कह रहे हो कि आप भक्ति के गुणों को, लक्षणों को प्रकट करने आए हो, तो भक्ति के क्या गुण हैं, भक्तों के क्या गुण हैं, उसको बताओ। तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी ऐश्वर्य की कामना नहीं करते। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों के पास ऐश्वर्य नहीं होता, ये नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सारे गरीब व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों के पास ऐश्वर्य नहीं होता, लेकिन शुद्ध भक्त कामना नहीं करता। प्रभुपाद समझाते हैं कि शुद्ध भक्त को जब ऐश्वर्य मिलता है वो भगवान की इच्छा से मिलता है, साधारण व्यक्ति को जब ऐश्वर्य मिलता है तो वो पुण्य कर्मों से मिलता है। तो ऐश्वर्य व्यक्ति को दो प्रकार से मिलता है, एक पुण्य कर्मों से और दूसरा भगवान की इच्छा से। श्रील प्रभुपाद को भगवान ने बहुत समय तक कोई ऐश्वर्य नहीं दिया। दिल्ली की सड़कों पर पैदल घूमा करते थे, वृंदावन से आया करते थे, बुक छापने के लिए किसी से पेपर की मांग किया करते थे, उधार लेकर आते थे, प्रिंटिंग वालों को कहते थे छाप दीजिए, प्रिंटिंग वाले कहते थे क्यों स्वामी जी ये सब कार्य कर रहे हो, आप जाओ वृंदावन में बैठ के राधे राधे करो, ये सब आपका काम नहीं है। तो प्रभुपाद ये सब मेहनत करते, फिर बुक को छपवाते, जाकर बांटा करते, लोगों से कहते लीजिए इसको पढ़िए। भगवान ने कोई ऐश्वर्य नहीं दिया। उसके बाद जब उन्हें अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए अमेरिका जाना था तो उनको प्रार्थना याचना करनी पड़ी सुमति मोरारजी से कि एक टिकट दे दीजिए। भगवान ने कोई ऐश्वर्य नहीं दिया। और फिर गए भी किसमें? कार्गो शिप, ऐसे जहाज में जिसमें सामान जाता है, जिसमें व्यक्ति जाते, पैसेंजर जाते, वो भी नहीं, जिसमें सामान जाता है, उस शिप में भेजा भगवान ने। क्या ऐश्वर्य दिया? एक प्लेन का टिकट नहीं दे सकते थे भगवान श्रील प्रभुपाद को कि प्लेन से चले जाते, तुरंत पहुंच जाते 10-12 घंटे में, 20 घंटे में, एक महीना ऐसे। तो क्यों किया, क्यों ऐश्वर्य नहीं दिया? भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान दिखा रहे थे कि भक्त हर अवस्था में भगवान को नहीं भूलता। और फिर जब भगवान ने ऐश्वर्य दिया श्रील प्रभुपाद को, तो इतना ऐश्वर्य कि थोड़े ही समय में 108 मंदिर, हजारों शिष्य, पैसे की कमी नहीं, किसी ऐश्वर्य की कमी नहीं, बड़े बड़े लोग उनको मिलने आ रहे हैं, बड़े वैज्ञानिक उनको मिलने आ रहे हैं, दार्शनिक उनको मिलने आ रहे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ उनको मिलने आ रहे हैं, इतना ऐश्वर्य दे दिए। तो देखिए कितना हम लोग प्रभुपाद के जीवन में भेद देखते हैं। एक तरफ प्रभुपाद एक टिकट पाने के लिए प्रार्थना बार बार याचना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना ऐश्वर्य कि बड़े बड़े नेता मिलने आ रहे हैं प्रभुपाद से, मिलना चाहते हैं, और बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रसिद्ध लोग, अमेरिका के बड़े बड़े, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग, कोई गायक या जो भी है, वो प्रभुपाद के शिष्य बन रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रभुपाद के शिष्य बन रहे हैं, बड़े उद्योगपति प्रभुपाद के शिष्य बन रहे, दुनिया में प्रसिद्ध उद्योगपति प्रभुपाद के शिष्य बन रहे। तो भगवान ने जब ऐश्वर्य दिया तो इतना ऐश्वर्य दिया प्रभुपाद को। तो ये ऐश्वर्य भगवान की इच्छा से मिलता है, ये कोई अपने किए गए पूर्व कर्मों के कारण नहीं है। तो जब शुद्ध भक्त को भगवान ऐश्वर्य देते हैं तो वो उनकी इच्छा से। तो प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि भक्त कभी इच्छा नहीं करता कि उसे ऐश्वर्य मिल जाए, और एक योग्य स्वामी और एक योग्य सेवक की वो परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि एक योग्य सेवक वो है जो स्वामी की सेवा कुछ पाने के लिए नहीं करता, वो तो फिर एक व्यापारी हो गया। वो कहते हैं कि वो तो एक व्यापारी हो गया जो सेवा कर रहा है ताकि मुझे कुछ मिले। लेकिन एक एक भगवान का भक्त, एक सच्चा योग्य शिष्य या योग्य सेवक, वो कभी स्वामी की सेवा इसलिए नहीं करता कि उसको कुछ प्राप्त हो। और एक योग्य स्वामी कौन है, दोनों की परिभाषा वो देते हैं। एक योग्य सेवक कौन है जो स्वामी की सेवा इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ प्राप्त हो। और एक योग्य स्वामी कौन है, एक योग्य स्वामी वो है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो अपने सेवक को कुछ उपहार या कुछ वरदान केवल अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि बस मान प्रतिष्ठा बनी रहे। जैसे देवी देवता होते हैं वे लोग दे देते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी नहीं देते हैं। भगवान तो सब कुछ हरण भी कर लेते हैं। तो भगवान के भक्त के लिए जरूरी नहीं है कि भगवान उनको कुछ देंगे। तो ये सच्चे स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि किसमें अच्छा है। अगर वो देखते हैं कि इसको धन देने से मेरे पास आएगा तो धन देते हैं, इसका धन ले लेने से मेरे पास आएगा तो धन ले लेते हैं। भक्तों के जीवन में ऐसी व्यवस्था करते हैं। आज भी भगवान भक्तों के जीवन में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भक्त का सब कुछ ले लेते हैं और फिर भक्त पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा हो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत उसकी आसक्ति भौतिक भोगों में भी हो, भौतिक ऐश्वर्य में भी हो, भगवान उसका भौतिक ऐश्वर्य निकाल देते हैं ताकि पूर्ण रूप से वो भगवान की ओर बढ़ सके। तो ये सच्चे स्वामी हैं। प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि आप सच्चे स्वामी हैं, आप केवल वरदान इसलिए नहीं देते हैं कि आपको देना ही है। जैसे देवी देवता, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को, देना ही था, उसने तपस्या की थी, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप सच्चे स्वामी। तो प्रहलाद महाराज इस चीज को कहते हैं। और फिर जब प्रहलाद महाराज ने ये कह दिया तो मानो प्रहलाद महाराज को लगा मन में कि भगवान कह रहे हैं कि ठीक है कुछ तो मांगो, मेरी इच्छा है, क्योंकि भगवान ने पहले कहा मांगो। तो अगर ये कहे भगवान कि ठीक है तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है लेने की, मेरी इच्छा है, मांगो उसके लिए, कुछ तो मांगो, तो बहुत सुंदर बात भगवान से मांगते हैं प्रहलाद महाराज, बहुत अच्छी बात। क्या मांगा प्रहलाद महाराज ने, ये सोचकर कि हाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आप दास्य कामां, अगर आपकी इच्छा है मुझे कोई काम, मुझे कोई वरदान देने की, तो एक वरदान दीजिए। क्या मांगा प्रहलाद महाराज ने, किसी को पता है? हाँ, नहीं अभी नहीं मांगा हूं। हाँ, आपके पास वो लिखा हुआ है वहां पर सामने। प्रहलाद महाराज ने बहुत बहुत बढ़िया वरदान मांगा। प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आपकी इच्छा है मुझे कुछ देने के लिए, तो मेरे हृदय से कुछ मांगने की इच्छा को निकाल दीजिए। बस आप चाहते हैं ना कि मैं मांगू, मैं मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, मेरे हृदय से मांगने की इच्छा को भी निकाल दीजिए, सारी इच्छाओं को निकाल दीजिए मेरे हृदय से, जितनी भौतिक इच्छाएं हैं। ये बहुत सुंदर बात, क्योंकि हम मांगते रहते हैं, प्रहलाद महाराज की तो वही इच्छा को ही निकाल दीजिए। अब क्या मांगू बताइए। आपने कहा मांगू, मैंने मांग लिया, लेकिन क्या मांगा? हृदय से इच्छा को निकाल दीजिए, आपसे कुछ मांगने की भी इच्छा नहीं रहे, ये वरदान मैं चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जितनी हृदय में मेरी इच्छाएं उनको निकाल दीजिए, भौतिक इच्छाओं को। तो ये जानना चाहिए कि भौतिक इच्छाएं भगवान से, क्या हमें कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए? हृदय को इच्छा शून्य करना चाहिए? नहीं, भौतिक इच्छाओं को निकाल देना चाहिए। भगवान की भक्ति की कामना वो तो हमें करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति अपनी काम वासनाओं के द्वारा कष्ट पाता रहता है। ये काम वासना है जो उसको अलग अलग पाप करने के लिए, अलग कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और उसी के द्वारा वो हमेशा कष्ट पाता रहता है और सब कुछ उसका नाश हो जाता है। बहुत सारी चीजों का वो वर्णन करते हैं, सत्यता का नाश हो जाता है, उसके कर्मों का नाश हो जाता है, उसके यश का नाश हो जाता है, ये सब केवल काम इच्छाओं के द्वारा हृदय में। और प्रहलाद महाराज के बचपन से हृदय में काम इच्छाएं रहती है और इन काम इच्छाओं के द्वारा सब कुछ नाश होता है। इसीलिए व्यक्ति को केवल आपकी सेवा में लगना चाहिए। तो मानो प्रहलाद महाराज से भगवान ने पूछा हो कि सेवा क्यों चाहिए तुम्हें, ठीक है कोई और वर नहीं है, तुम सेवा में लगना चाहिए, तो सेवा क्यों कर रहे? तो प्रहलाद महाराज कहते कि जो व्यक्ति सारी भौतिक कामनाओं को त्याग देता है और केवल आपकी सेवा में लगता है, सारी भौतिक इच्छाएं त्याग कर, उसे आपके समान ऐश्वर्य मिलता है। तो अर्थात प्रहलाद महाराज क्या समझा रहे हैं कि अगर हमें ऐश्वर्य की कामना है, हम ऐश्वर्य चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्य की कामना करनी चाहिए, भगवान के साथ, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने का ऐश्वर्य, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये इस भौतिक जगत के थोड़े बहुत ऐश्वर्य, एक राज्य, कुछ धन इत्यादि, इसको लेकर क्या लाभ है? अगर ऐश्वर्य चाहिए तो ऐसा ऐश्वर्य तो ये आपकी सेवा से मिलता है, इसीलिए मैं आपकी सेवा को चाहता हूं। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान अब बोलने लगे। भगवान कहने लगे प्रहलाद महाराज से कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी इच्छा नहीं करते, कोई इच्छा नहीं करते। देखिए ये बात को भगवान ने कई स्थानों पर कहा है। भगवान कपिल देव भी माता देवहूति को ज्ञान देते समय यही बात कहते कि मेरा भक्त कुछ नहीं चाहता, वो तो मुक्ति भी नहीं चाहता। वो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की मुक्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, दीयमानां न ग्रहणाति बिना मत सेवनम जना, मेरा जो भक्त होता है वो मुक्ति को भी नकार देता है अगर उसमें सेवा नहीं है, बिना मत सेवनम जना। तो अगर सेवा नहीं है तो फिर मुक्ति लेकर भी क्या लाभ? तो भगवान कपिल कहते कि मेरा भक्त इतना श्रेष्ठ है, और यहां भी नरसिंह देव यही बता रहे कि मैं जानता हूं मेरे भक्त कभी कुछ नहीं मांगते। देखिए हम लोग जब इन चीजों को सुनते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम आप लोग जब भागवत में बैठे तो इसको एक केवल भागवत कथा या भागवत श्रवण या एक क्लास की तरह ना लें, हर रोज इसमें से कुछ सीखें अपने जीवन के लिए। तो जब हम लोग ये सुनते हैं कि भगवान के भक्त कभी कुछ नहीं मांगते, इतने सारे उदाहरण हैं, प्रहलाद महाराज इतना श्रेष्ठ उदाहरण, जहां नरसिंह देव कह रहे हैं मांगो मांगो और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमें भी भौतिक चीजों को मांगना बंद करना चाहिए भगवान से, क्योंकि नहीं तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। जैसे कहते ना कि स्टैंप किए हुए भक्त बनेंगे हम लोग, हृदय से नहीं, बाहरी दृष्टि से, तिलक धारण करके, कंठी धारण करके, भगवे वस्त्र धारण करके हम अपने आप को भक्त कहलाएंगे, लेकिन जब तक इस भाव में नहीं आएंगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती। बंद कर देना, कोई इच्छा नहीं, भगवान के भक्त कोई इच्छा नहीं करते, जो भगवान की इच्छा वही भक्तों की इच्छा। भगवान चाहे कष्ट में रहो, भक्त कष्ट में सुखी रहता, भगवान चाहे ऐश्वर्य लो, वो ऐश्वर्य में सुखी रहता। श्रील प्रभुपाद के पास जब कुछ नहीं था, प्रभुपाद तब भी भगवान की प्रसन्नता था, भगवान को धन्यवाद देते थे, और जब प्रभुपाद के पास बहुत कुछ आ गया तब भी प्रभुपाद भगवान को धन्यवाद देते, उनके भाव में कोई अंतर नहीं हुआ। तो इसलिए ये चीजें चाहिए। तो प्रहलाद महाराज समझाते हैं, भगवान कहते हैं नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज से कि मेरा भक्त कुछ नहीं मांगता, फिर भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं। अभी तक तो भगवान कह रहे थे कि मांगो मांगो, प्रहलाद ने मांगा ही नहीं, तो अब आदेश दे दिया कि तुम्हें ये असुरों का तुम राज्य करोगे, पूरा राज्य करोगे, और कब तक? एक मनवंतर तक। देखिए, इसीलिए हम पहले बता रहे थे कि अगर हम कुछ मांगेंगे भगवान से तो थोड़ा मांगेंगे, भगवान जब देंगे तो बहुत सारा। एक मनवंतर तक राज्य करोगे। आप सोचिए मनवंतर कितना बड़ा समय होता है, 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं और उस एक दिन में 14 मनु होते हैं, अर्थात करीब 71 चतुर्युग एक मनवंतर होता। एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं एक चतुर्युग में। ऐसे 71 चतुर्युग कितने साल हो गए? खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं, हम जानते हैं। तो 43,20,000 साल एक चतुर्युग में, ऐसे 71 चतुर्युग, ये मिलकर एक मनवंतर बनाता है। और प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा एक मनवंतर तक राज्य करो, लाखों लाखों साल। अगर प्रहलाद महाराज मांग लेते, मान लीजिए कुछ भौतिक इच्छा से, तो क्या कहते भगवान 1000 साल तक राज्य कर लो, 2000, 10,000। भगवान ने एक मनवंतर तक राज्य करो और मैं आदेश देता हूं कि तुम इस राज्य को करो इस एक मनवंतर तक। और तुम ये चिंता नहीं करना, मानो प्रहलाद ने पूछ लिया, मानो प्रहलाद के मन में आ गया हो कि अरे एक मनवंतर तक राज्य करूंगा, भौतिक भोगों में पड़ जाऊंगा। भगवान कहते चिंता नहीं करना, तुम मेरे बारे में सुनते रहो, मेरा श्रवण करते रहो और मन मुझ में लगाकर रखो, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से राज्य कर सकोगे और मेरी भक्ति भी कर सकोगे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज को उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जो व्यक्ति, भगवान ने जब ये कह दिया तो भगवान को बड़ा आनंद आया कि प्रहलाद की प्रार्थनाओं के द्वारा, तो भगवान कहते हैं प्रहलाद से कि जो व्यक्ति मेरे बारे में सुनता है, नरसिंहदेव कह रहे हैं, और तुम्हारे बारे में, प्रहलाद को भी कह रहे हैं, जो मेरे बारे में सुनता है और तुम्हारे बारे में जो सुनेगा, और तुम्हारी इन प्रार्थनाओं को जो सुनेगा या कहेगा, वो निश्चित इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं नरसिंहदेव, और फिर भी उनकी इच्छा समाप्त नहीं हुई कि वो कुछ मांग नहीं रहा है। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है, अब इतना भगवान कह रहे हैं तो कुछ मांग लेता हूं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान एक चीज मैं मांगना चाहता हूं। नरसिंहदेव बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो कुछ तो मांग रहा है, इतने समय से कह रहा हूं ये मांग ही नहीं रहा। तो क्या मांगा? बोले ये जो मेरे पिताजी आपकी गोद में हैं, जिनका अभी अभी आपने वध कर दिया, जिनको नाश कर दिया, ये इन्होंने आपके प्रति अपराध किया था, भले ही ये आप मृत्यु के समय भी आपका स्पर्श इन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी हृदय में इनकी भावना बड़ी गलत थी आपके प्रति, द्वेष करते थे आपसे, आपको अपना शत्रु मानते थे। देखिए एक महत्वपूर्ण बात, प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकश्यपु के अपराधों को गिना रहे हैं, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसने मुझे मारने का प्रयास किया था, इन्होंने मुझे सांपों के बीच फेंक दिया था, अग्नि में बिठा दिया था, बिल्कुल नहीं। आपके प्रति अपराध किया था इसलिए अपराधी है, मेरे प्रति अपराध किया इसलिए अपराधी नहीं है, अपराधी इसलिए है आपसे द्वेष किया, आपसे आपको शत्रु माना, तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इनको मुक्त कर दीजिए, बस ये मैं चाहता हूं। तो जो प्रहलाद ने ये कहा कि मेरी इच्छा इतनी है कि आप इनको मुक्त कर दीजिए, तो उस समय भगवान कहते हैं प्रहलाद महाराज से कि अरे अपने पिता की तो तुम चिंता ही मत करो, उनकी मुक्ति की चिंता मत करो प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जहां पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। 21 पीढ़ियां, प्रभुपाद समझाते हैं कैसे 21 पीढ़ियां, उस श्लोक के एक शब्द को लेकर समझाते हैं कि यहां भगवान कह रहे हैं 21 पीढ़ियां, मतलब प्रभुपाद कहते हैं अब जिस घर में जन्म हुआ तो उसमें उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, प्रभुपाद कहते हैं ऐसे 4-5 पीढ़ियां आप ले लीजिए, तो 21 पीढ़ियां मतलब केवल इस जन्म के माता पिता नहीं, अन्य जन्मों के माता पिता को भी वो मुक्त कर देता है। देखिए ये भक्ति का लाभ है। हो सकता है पिछले जन्म में वो किसी और माता पिता का पुत्र रहा हो, उसके पिछले जन्म में किसी और माता पिता का पुत्र रहा हो जो बिल्कुल भक्त नहीं हो, लेकिन क्योंकि इस जन्म में वो भक्ति कर रहा है तो अपने पिछले जन्म के माता पिता को भी वो मुक्त कर देता है। 21 पीढ़ियां ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं कि कई जन्मों के माता पिता मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पिता की तो बिल्कुल चिंता मत करो, वो तो मुक्त हो ही गए हैं, और साथ ही साथ जो तुम्हारा अनुगमन करेंगे, तुम्हारे जैसा भक्त अगर पालन भक्ति करता है तो जो तुम्हारा अनुगमन करेंगे वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे कहकर फिर उन्होंने प्रहलाद से कहा कि अब तुम्हें अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। तो नरसिंह देव के आदेश पर प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का श्राद्ध किया। उनकी जो भी श्राद्ध इत्यादि करने की क्रियाएं थी उनको पूरा किया, और फिर उसके बाद जब श्राद्ध क्रिया हो गई तो अब तब तक नरसिंहदेव थे, नरसिंहदेव ध्यान दे रहे थे कर रहे कि नहीं, क्योंकि भक्त है पता नहीं चले जाए तो फिर बोले अरे ये असुर पापी इसका श्राद्ध नहीं करूंगा मैं, तो भगवान खड़े रहे। तो श्राद्ध हो गया, उसके बाद अब ब्रह्मा जी वहां उपस्थित थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अब भगवान बड़े प्रसन्न है, पहले तो सब डर रहे थे अब प्रसन्न है, तो ब्रह्मा जी आगे गए और ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं अर्पण की, भगवान से कहा कि आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप ही सभी चीजों के कारण हैं, और आपने इस असुर को मार दिया, बहुत अच्छा हुआ, इसको मैंने वरदान दिया था। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैंने वरदान दिया था लेकिन इसने वरदान का दुरुपयोग कर दिया, इसको अहंकार हो गया। दरअसल ब्रह्मा जी घबरा रहे थे कि अब भगवान अभी ठीक है, अब तो सब हो गया, अब मेरी तरफ देखेंगे, तो पहले ही वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो अपना को सुरक्षित कर रहे हैं कि मैंने दिया ठीक है लेकिन इसने दुरुपयोग किया, ये गलती हिरण्यकश्यपु की, मेरी गलती नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसने दुरुपयोग कर, अहंकारी हो गया, मैंने इसको वरदान दिया कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ये मरेगा नहीं, तो इसको पाकर ये अहंकारी हो गया, इसने दुरुपयोग किया, भगवान आपने बहुत अच्छा किया, इसको मार दिया। तो देखिए अपने आप को बचा रहे, ऐसा होता है ना कभी कभी हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो बिना किसी के पूछे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई चीज टूट जाए, बच्चा होता है घर में कुछ कांच की चीज तोड़ देता है तो माँ पूछे इससे पहले ही जाकर बोलता है एक्चुअली मैंने नहीं तोड़ा, वो हवा तेज आई थी वहां से बिल्ली आई उसके लिए वो टूट गया। तो ब्रह्मा जी अब उस भाव में है, मेरी गलती नहीं है, इसने गलती की। तो भगवान ने सुन लिया और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आपका जन्म कमल से हुआ है, मतलब बड़े विशेष हो आप, किसी का जन्म कमल से होता है क्या, देखा है कभी कमल से कोई बच्चा पैदा हो, तो भगवान इसीलिए कहते तुम्हारा जन्म कमल से हुआ है, बड़े विशेष हो। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि जब सांप को दूध पिलाते हैं तो उसका जहर बढ़ता है और कुछ नहीं होता, भगवान कहते हैं सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा, जहर बढ़ता है। इसी तरह असुरों को ऐसा आशीर्वाद दोगे तो क्या होगा, मानो भगवान कह रहे हो तुम्हारी वजह से मुझे आधा नर और आधा सिंह का शरीर लेना पड़ा, अच्छा भला मैं बाकी सारे अवतारों में या तो पूरा मनुष्य बना था या पूरा पशु बना था, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, पूरे पशु बने थे, लेकिन ये तुम्हारी तरह तुम्हारी वजह से मुझे आधा आधा होना पड़ा। तो भगवान वैसे कह रहे थे कि जैसे एक सर्प को आप दूध पिलाओ तो उसका जहर बढ़ता है, इसी तरह जैसे आप असुरों को, ऐसे हिरण्यकशिपु जैसे असुर को कोई भी वरदान दे दोगे तो ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए आगे से आई मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, भगवान कहते हैं चेतावनी देता हूं, आगे से ये नहीं करना। ब्रह्मा जी पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। भगवान चेतावनी दे लेकिन ब्रह्मा जी भूल जाते हैं, फिर रावण को देने वाले हैं ना आगे। अभी हिरण्यकश्यप हो गया, आगे रावण आएगा। रावण भी तो यही सब मांगेगा, मुझे कोई मार नहीं सके, इससे नहीं मरू, उससे नहीं मरू। और ब्रह्मा जी हाँ ठीक है बोल दिए। तो भगवान ने चेतावनी दी कि आगे से ऐसा नहीं करना, किसी को देना नहीं। ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने लगे कि ठीक है गलती हो गई, मैंने ऐसा वरदान दे दिया। तो ऐसे कहकर फिर भगवान की उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान फिर वहां से चले गए। तो जब भगवान चले गए तो प्रहलाद महाराज ने फिर सारे देवी देवताओं की पूजा की, सबको आदर सम्मान दिया। तो ये एक उदाहरण है कि जब तक भगवान थे प्रहलाद महाराज ने देवी देवताओं की अर्चना नहीं की, लेकिन जब भगवान चले गए तब उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की। ये समझाने के लिए कि जब भगवान हो तब हमें आवश्यकता नहीं है अन्य देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उनको आदर सम्मान देने में कोई गलती नहीं। तो उनको आदर सम्मान उन्होंने दिया। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हमारे घरों में पहले से देवी देवता की पूजा हो रही है, अब हम कृष्ण की पूजा करने लगे क्या करें, हमारी इच्छा नहीं है या हमारे घर वाले अनुमति नहीं देते देवी देवताओं को हटाने की, तो क्या किया जाए। तो फिर भगवान को ऊपर रखना है, श्रेष्ठता भगवान को और फिर देवी देवताओं को अगर आवश्यकता। तो प्रहलाद महाराज ने पहले सब भगवान की पूजा अर्चना की, फिर अब देवी देवताओं को आदर दे रहे। तो ऐसे जब प्रहलाद ने सबको आदर इत्यादि दे दिया तो फिर सारे देवता भी चले गए। तो अब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, ये कथा आपको याद है कि नारद सुना रहे हैं, क्योंकि प्रश्न किया था युधिष्ठिर ने कि शिशुपाल कैसे भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये जय विजय का पहला जन्म था, फिर उसके बाद दूसरे जन्म में ये कुंभकर्ण और रावण बने, जिनका वध भगवान ने श्री रामचंद्र के रूप में किया, और तीसरे अब जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं, जो तुम्हारे सामने तुमने देखा कि वो उनको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। ये जान लो कि इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने भगवान का स्मरण किया सतत, इसीलिए इन्हें भगवान के समान शरीर मिला, सारूप्य मुक्ति मिली है इन्हें। ये आश्चर्य की बात है, ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण जो लोग उनका स्मरण करते हैं, भले उन्होंने द्वेष से किया लेकिन क्योंकि स्मरण किया, ये भगवान की समानता है, भगवान ने उनको भी सारूप्य मुक्ति दी। प्रभुपाद एक प्रश्न करते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई द्वेष से, घृणा से, शत्रुता से भगवान का स्मरण करता है उसको सारूप्य मुक्ति मिल जाती है, फिर अगर कोई भक्ति से और प्रेम से भगवान का स्मरण करेगा तो उसको क्या मिलेगा। तो इसीलिए हमें भगवान का स्मरण सतत करना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये लोग बने और फिर उनका वध कृष्ण ने कर दिया। और जानते हो कृष्ण कौन है? अभी कृष्ण का वर्णन किया तो जानते हो कृष्ण कौन है? ये वही परब्रह्म है, ये वही ब्रह्म ज्योति के स्रोत हैं, ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो एक साधारण मनुष्य की भांति तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार की तरह रह रहे हैं, और कभी कभी तुम्हारे सेवक बनते हैं, कभी तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। दोनों किया ना भगवान ने, अर्जुन के गुरु भी बने, मित्र भी बने, युधिष्ठिर महाराज के सेवक बने, यज्ञ में उनके लिए वो लोग जो आ रहे थे उनके चरणों को धो रहे थे। तो कभी तुम्हारे सेवक बन जाते हैं और कभी तुम्हारे गुरु बनते हैं। है ये परम पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये श्री कृष्ण। तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम्हारे राज्य में इतने ऋषि मुनि आते हैं ये देखने के लिए कि कौन है वो व्यक्ति जिसके लिए भगवान उनके दास बने हुए। श्री कृष्ण यहां पर हैं, इसीलिए सब लोग आते हैं, और यही वो श्री कृष्ण है। कहते कहते नारद मुनि ने कह दिया कि यही श्री कृष्ण है जिनकी वंदना सारे देवता करते हैं। एक बार शिवजी का नाम बचाने के लिए भगवान ने शिवजी की रक्षा की थी, ये वही कृष्ण है। एक असुर से रक्षा की थी, तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सुना उन्होंने प्रश्न किया, अरे ऐसा कैसे हुआ कि शिवजी का जो मान सम्मान खतरे में आ गया और भगवान को रक्षा करनी पड़ी। क्या लीला हुई थी बताइए। तो फिर नारद मुनि बताते हैं, मैं दानव नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, बड़ा मायावी था मय दानव। तो उसने एक राक्षसों के रहने के लिए एक स्थान बनाया जो अदृश्य था, दिखता नहीं था, और उसमें तीन भाग थे, तीन भाग का बना, इसलिए उसको त्रिपुर कहते थे, त्रिपुर, त्रि यानी तीन। तो जब सारे राक्षस उसमें रहने लगे वो दिखाई नहीं देते थे, तो राक्षसों ने फिर देवताओं पर आक्रमण करना शुरू किया। देवता संभाल नहीं पाए, शिव जी के पास गए कि आप ही कुछ कीजिए। तो शिव जी ने एक बाण से बाण चलाया, ये जो सारा इनका त्रिपुर था उसको चारों ओर आवृत कर दिया, ढक दिया, और उसके कारण ये सारे जो असुर थे वो मरने लगे और गिरने लगे। तो जैसे ही गिरे नीचे, मय दानव ने एक अमृत का कुंड बना दिया, तो सारे दानव अमृत कुंड में गिरते हैं और फिर से उनकी शक्ति बड़ी हो जाती है। अब शिव जी क्या करें, तो शिव जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मारते हैं वो कुंड में गिरते हैं, अमृत पी के उनका शरीर वज्र के समान हो जाता है। तो भगवान ने देखा श्री कृष्ण ने कि इनसे होगा नहीं, शिव जी से, तो ब्रह्मा जी को साथ में लिया। ब्रह्मा जी बछड़े बने, श्री कृष्ण गायें बने और गए, और ऐसा वर्णन है कि सबके सामने, दानवों के सामने गाय बछड़ा आ रहे हैं, दानव देख रहे हैं जाते हुए, लेकिन भगवान की माया इतनी श्रेष्ठ है कि कोई रोक नहीं पाया। क्यों ये वर्णन किया, क्योंकि मैं दानव माया से उसने सब प्रकट किया था, लेकिन सारी माया सारी योग शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण है, योगेश्वर। तो उनकी जब योग शक्ति आई, उनकी जब शक्ति प्रकट हुई, सारे दानव देख रहे हैं कि ये गाय जा रही है और गई और अमृत के कुंड में पूरा अमृत पी रही है, मैं दानव भी देख रहा लेकिन कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान की शक्ति। तो सबके सामने जाके भगवान ने उस अमृत को पूरा पी लिया, खत्म कर दिया, और मय दानव ने, और सारे उस समय दानव जो खड़े हैं वो हाय हाय कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हिल भी नहीं पा रहे, बस हाय हाय, ये क्या हो रहा है, हमारा अमृत जा रहा है। वो अमृत सारे भगवान पी के चले गए। और उस समय मय दानव ने कहा कि देखो, इस जगत में जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है ये दानव लोग अंत में भगवान को जरूर मान लेते हैं कभी कभी, तो जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है इस जगत में, और हम लोग तो सब बंधे हुए हैं, सारे चाहे देवता हो या दानव हो, भगवान के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब ऐसे भगवान सारा अमृत पी गए, और फिर उन्होंने शिव जी को अपना धनुष दिया, शिव जी के लिए रथ तैयार किया, शिव जी को उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए, और तब शिव जी उस पर बैठकर फिर दानवों से लड़ने गए और उन्होंने सबको समाप्त कर दिया। उस वो तीन त्रिपुर उसको जलाकर खाक कर दिया, और इसीलिए शिव जी का नाम हुआ त्रिपुरारी। जो त्रिपुर को मार दी, त्रिपुर को समाप्त करें, उनको त्रिपुरारी। तो ऐसे शिव जी की रक्षा श्री कृष्ण ने की, वही श्री कृष्ण आपके साथ हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं युधिष्ठिर महाराज। और वो कहते हैं कि इस कथा को जो भी सुनता है, प्रहलाद महाराज की कथा को, तो नारद मुनि कहते हैं ये जो मैंने कथा कही जिसमें भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ, भगवान का वर्णन हुआ, प्रहलाद महाराज की भक्ति का वर्णन हुआ, अगर कोई इसको कहता और सुनता है नित्य, तो निश्चित वो मुक्त हो जाता है। और अगर बड़े ध्यान से कोई कैसे प्रहलाद महाराज के कार्य थे, कैसे नरसिंहदेव प्रकट हुए, कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, अगर कोई ये सुनता है तो वो निश्चित आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। तो ऐसे कह के नारद मुनि इसका शुद्धि फल कह के फिर अंत में शिव जी की कथा को कहते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?
जैसे हम चेष्टा करते हैं भक्ति करने के लिए, और इसमें बहुत सारे